यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 18 दिसंबर के बुलेटिन की हेडलाइंस। यूएन प्रमुख का जर्मन संसद को संबोधन, कहा वैश्विक चुनौतियों के लिए चाहिए वैश्विक समाधान। कोविड-19 वैक्सीन के लिए अंधेरी सुरंग के छोर पर रोशनी में कुछ और चमक। WHO द्वारा वैक्सीन की 2 अरब खुराकों का प्रबंध करने का फैसला। सर्दियों की छुट्टियों में भी कोरोना वायरस से एहतियात बरते जाने की पुकार। और भारत के एक युवा इंजीनियर विद्युत मोहन ने खेतीबाड़ी के कूड़े कचरे का सदुपयोग करने के लिए ईजाद की एक अनोखी मशीन, मिला UN पृथ्वी चैंपियन का पुरस्कार। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को जर्मन संसद को संबोधित करते हुए आगाह करने के अंदाज में कहा है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जिन वैश्विक समाधानों की जरूरत है, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत कमी है। UN प्रमुख ने ये संबोधन जर्मन भाषा में किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा समय में दरपेश कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने वाला ऐसा वैश्विक आर्थिक संकट है, जिसमें टिकाऊ विकास व लैंगिक समानता पर धीमी होती प्रगति भी शामिल हैं। UN प्रमुख को जर्मन संसद में भाषण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आमंत्रित किया गया था।
Die Pandemie hat tiefe Bruchlinien offengelegt. Ungleichheiten, Ungerechtigkeit, unzureichende soziale Sicherheit. Überall haben die Schwächsten am meisten zu leiden.
UN प्रमुख कह रहे थे कि महामारी ने गहराई से जड़ जमाए हुए खामियों और नाजुक हालात को उजागर करके रख दिया है। असमानताएं, अन्याय, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवच, हर जगह बेहद कमजोर हालात का सामना कर रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये स्पष्ट है कि वैश्विक चुनौतियों के वैश्विक समाधान की ही जरूरत है, लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत कमी देख रहे हैं। ये भी स्पष्ट है कि भविष्य को अच्छा बनाने का रास्ता विश्व में खुलापन कायम करने से होकर जाता है, मगर फिर भी अनेक स्थानों पर हमें बंद दिमाग नजर आते हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने अपने भाषण में WHO की कोविड-19 महामारी की वैक्सीन पहल ACT एक्सेलरेटर और कोवैक्स सुविधा के लिए जर्मन समर्थन के वास्ते आभार प्रकट किया। ध्यान रहे कि इन कार्यक्रमों का मकसद महामारी की वैक्सीन विकसित करने, सभी के लिए उसके समान वितरण, बीमारी की जांच पड़ताल और उपचार मुहैया कराना है। महासचिव ने कहा कि अगला कदम यह होगा कि वैक्सीन को हर जगह हर किसी को उपलब्ध कराया जाए। हमारे सामने अब यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि वैक्सीनों को वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये वैक्सीन हर जगह हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो, यानी एक जनता वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का अंत सामने नजर आने लगा है, मगर साथ ही हमें ये नहीं भूलना होगा कि एहतियात अब भी बहुत जरूरी है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने इस खबर का भी स्वागत किया कि वैश्विक वैक्सीन गठबंधन कोवैक्स ने महामारी की वैक्सीन की लगभग 2 अरब खुराकों की खरीदारी के लिए तैयारियां की हैं। कोवैक्स 190 देशों के समर्थन से शुरू की गई एक वैश्विक पहल है, जिसके तहत कोविड-19 महामारी की वैक्सीन सभी देशों को समानता के स्तर पर मुहैया कराने का लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम के तहत ये वैक्सीन वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान उपलब्ध हो जाने की उम्मीद जताई गई है। इस कार्यक्रम के तहत अगले वर्ष के मध्य तक कोविड-19 महामारी की वैक्सीन की इतनी खुराकें उपलब्ध करा दी जाएंगी कि सभी भागीदार देशों में स्वास्थ्य व सामाजिक देखभाल कर्मियों की हिफाजत की जा सके। ये वो देश होंगे जिन्होंने इस समय सीमा के भीतर वैक्सीन की उपलब्धता की इच्छा प्रकट की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि ये एक बहुत अच्छी खबर है और वैश्विक स्वास्थ्य के रास्ते में एक मील का पत्थर भी। ये समय कुछ तसल्ली देने वाला है कि महामारी का अंत नज़दीक नज़र आ रहा है, मगर ये समय ये ख्याल रखने का भी है कि हम अपनी एहतियात बरतने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। खुद को और दूसरों को सुरक्षित व स्वस्थ रखने के प्रयासों में हम सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, यहाँ तक कि अवकाश व छुट्टियों के दौरान भी। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि वो वर्ष 2021 में हर महीने कोविड-19 की वैक्सीन की 850 टन खुराकों का परिवहन करने के लिए सक्षम व मुस्तैद है। ये क्षमता संगठन की आम औसत ढुलाई की क्षमता से दोगुना ज्यादा होगी। सर्दी के मौसम में छुट्टियों का समय परिवार और समुदाय के लिए नज़दीक आने, घुलने मिलने और भविष्य की तैयारी के लिए नई ऊर्जा के संचार का मौका माना जाता है। लेकिन इस वर्ष वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण यूरोप में हालात बेहद खराब हैं और सामूहिक आयोजनों में शिरकत करने के प्रति लोगों में आशंका और बेचैनी है। इन हालात के मद्देनज़र यूरोप में WHO के क्षेत्रीय कार्यालय ने धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में संक्रमण की रोकथाम के लिए पर्याप्त एहतियात बरते जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूरोप में हर वर्ष क्रिसमस के त्यौहार के नज़दीक शीतकालीन अवकाश के दौरान व्यापक पैमाने पर आयोजन किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों, धार्मिक समूहों व मित्रों के साथ शिरकत करते हैं। लेकिन सामूहिक आयोजनों और उनमें लोगों के एकत्र होने से कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा भी है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। आमतौर पर उत्सव और चहल पहल के इस समय में पनपती आशंका दर्शाती है कि वर्ष 2020 कितना मुश्किल और अभूतपूर्व साबित हुआ है। यूरोपीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रयासों के बावजूद अभी इस पर पूरी तरह काबू नहीं किया जा सका है और संक्रमण अब भी तेजी से फैल रहा है। अब तक यूरोप में कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,23,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 4,93,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2021 के शुरुआती हफ्तों और महीनों में फिर से नए मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है, जिसे टालने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की अहमियत को रेखांकित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप में फिर से संक्रमणों के उभार की रोकथाम के लिए हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। जिन देशों में व्यापक पैमाने पर कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव हो रहा है, वहां धार्मिक यात्राओं व जुलूस को स्थगित करने या फिर उनमें शिरकत करने वाले लोगों की संख्या कम करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। इस वर्ष धार्मिक समारोहों को अलग तरीके से संपन्न किया जाना होगा, खुले स्थान पर सीमित अवधि के लिए सीमित संख्या में लोगों के साथ, और इस दौरान शारीरिक दूरी, खुली हवा, हाथों की स्वच्छता और मास्क पहने जाने का ध्यान रखा जाना होगा। घरों के अंदर लोगों का एकत्र होना जोखिम भरा है, क्योंकि हर एक इंसान संक्रमण से बचाव के लिए पूर्ण रूप से एहतियाती उपायों का पालन नहीं कर पाता। इन महफिलों को घर के बाहर आयोजित किया जाना चाहिए। वहां एकत्र लोगों को मास्क पहनकर शारीरिक दूरी बरतने का ध्यान रखना चाहिए। घर के भीतर ऐसे आयोजन होने पर लोगों की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए और कमरों को हवादार बनाया जाना चाहिए। जो लोग अवकाश के दौरान अपने परिजनों व मित्रों से मिलने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, उन्हें भीड़भाड़ भरे परिवहन के साधनों से दूर रहना चाहिए। कुछ देशों में परिवहन साधनों के इस्तेमाल से पहले कोविड का नेगेटिव टेस्ट चाहिए, जबकि अन्य देशों में एकांतवास की शर्त है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने सभी लोगों से इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक ताज़ा और प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्राकृतिक दुनिया और पर्यावरण को नुकसान में कमी लानी है तो तमाम देशों को अपने विकास रास्तों पर फिर से गौर करना होगा, नहीं तो पूरी मानवता के लिए प्रगति में व्यवधान पैदा हो जाने का जोखिम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस फिलहाल एक ताज़ा संकट है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है और हर जगह के समाजों को प्रकृति पर अपनी पकड़ ढीली करनी होगी, नहीं तो इसी तरह के और भी खतरों का जोखिम है। UNDP के प्रशासक अखीम स्टीनर का कहना है कि पृथ्वी ग्रह पर इस समय इंसानों का इतना दबदबा है जितना पहले कभी नहीं रहा। جیسا کہ رپورٹ درشاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی دیش نے گرہ پر بھاری دباؤ اتپن کیے بنا ابھی تک بہت اونچا مانو وکاس حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس غلطی کو سدھارنے والی پہلی پیڑھی بن سکتے ہیں۔ یہ مانو وکاس کے لیے اگلا مورچہ ہوگا۔ یو این ڈی پی کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کا یہ 30واں ورشگانٹھ سنسکرن ہے۔ اس میں مانو پرگتی پر ایک ایسا نیا پرایوگک سوچکانک شامل کیا گیا ہے جو دیشوں کے کاربن ڈائی آکسائڈ اتسرجن اور بھوتک پدارتھوں کے پد چنہوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ذریعے کسی دیش کے سواستھے، شکشا اور رہن سہن کے مانکوں کو ماپا جاتا ہے۔ اس وارشک سوچکانک میں دو اور تتو شامل کیے گئے ہیں، دیش کا کاربن ڈائی آکسائڈ اتسرجن اور اس کے بھوتک پد چنہ۔ وشو سواستھیہ سنگٹھن ڈبلیو ایچ او اور سنیکت راشٹر بال کوش یونیسیف کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سواستھیہ دیکھ بھال کیندروں اور سویدھاؤں میں پانی اور سوچھتا سیواؤں جیسی بنیادی آوشیکتاؤں کی کمی کے کارن لگ بھگ 1.8 کروڑ سواستھیہ کرمی اور مریضوں کے لیے کووڈ-19 مہاماری اور انیہ بیماریوں کا جوکھم پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ اور جانکاری پرتشٹھا جین سے۔
ان یو این ایجنسیوں کی ایک رپورٹ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں سواستھیہ سیواؤں میں ہاتھ دھونے اور چکتسا کوڑے کو سرکشت طریقے سے پھینکنے کے لیے سمچت ویوستھا نہیں ہے۔ وشو سواستھیہ سنگٹھن کے مہا نردیشک ٹیڈروس ایڈھینوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ کسی سواستھیہ سویدھا یا کیندر میں پانی، صاف صفائی اور سوچھتا کے سادھنوں کے بنا کام کرنا ویسے ہی ہے جیسے نرسوں اور ڈاکٹروں کو نیجی بچاؤ اپکرنوں یعنی پی پی ای کے بنا کام کرنے کے لیے بھیجنا۔ سواستھیہ دیکھ بھال کیندروں و سویدھاؤں میں جل آپورتی، سوچھتا و صاف صفائی کا ہونا کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے آدھار بھوت ضرورت ہے، مگر اس کھیتر میں اب بھی بہت کمیاں ہیں، خاص طور سے کم وکست دیشوں میں۔ رپورٹ کے انوسار کم وکست دیشوں میں ہر دو میں سے ایک یعنی لگ بھگ 50% سواستھیہ دیکھ بھال سویدھاؤں میں پینے کے پانی کی بنیادی سویدھا بھی اپلبدھ نہیں ہے۔ 4 میں سے 1 یعنی لگ بھگ 25% سواستھیہ دیکھ بھال کیندروں میں ہاتھ دھونے کی سویدھا نہیں ہے، اور 5 میں سے 3 سواستھیہ دیکھ بھال کیندروں میں بنیادی سوچھتا سیوائیں نہیں ہیں۔ یونیسیف کی کاریکاری ندیشک ہینریٹا فور کا کہنا ہے کہ البتہ سواستھیہ سیواؤں میں اس طرح کی خامیاں کورونا وائرس مہاماری کا پھیلاؤ شروع ہونے سے پہلے بھی موجود تھیں، لیکن ورش 2020 نے ان کمیوں اور خامیوں کو اس طرح سامنے لا دیا ہے جنہیں نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب جبکہ ہم سبھی کووڈ-19 مہاماری کے بعد کی دنیا کی کلپنا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آکار دینے کی کوشش میں لگے ہیں، تو یہ سنشچت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بچوں اور ماتاؤں کو سواستھیہ دیکھ بھال کے ایسے ستھانوں پر بھیجیں جہاں سمچت پانی، سوچھتا اور صاف صفائی کی سویدھائیں اور اپکرن اپلبدھ ہوں۔ یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ رپورٹ لگ بھگ 165 دیشوں میں قریب 7,60,000 سواستھیہ دیکھ بھال سیواؤں اور کیندروں سے ایکتر کیے گئے آنکڑوں پر آدھارت ہے۔
بھارت میں سردی کے موسم میں کھیتوں میں فصلوں کی اپج کاٹنے کے بعد بچے ہوئے پوال اور انیہ کچرے کو کھلے میدانوں میں جلا دیا جاتا ہے۔ اس سے پردوشن کی سمسیا تو پیدا ہوتی ہی ہے، سانس کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بھارت کے ایک یووا انجینئر و انویشک ودیوت موہن نے اس سمسیا کے ندان کے لیے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس سے پوال یا پرالی کو اچھ تاپمان میں تپا کر چارکول یا کھاد یا پھر ایندھن جیسی وستوؤں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پردوشن کی سمسیا تو حل ہوتی ہی ہے، کسان کی آمدنی بھی بڑھتی ہے۔ دلی کے ودیوت موہن وشو بھر سے چنے گئے ان 7 انویشکوں میں سے ایک ہیں جنہیں پریاورن سنرکشن کے کھیتر میں اپنے اس اسادھارن کام کے لیے سنیکت راشٹر نے 2020 کے چیمپئن آف دا ارتھ پرسکار سے سمانت کیا ہے۔ ان کے اس کاریہ کے بارے میں وستت جانکاری کے لیے ہماری سہیوگی انشو شرما نے ان کے ساتھ خاص بات چیت کی۔
विद्युत, आपको संयुक्त राष्ट्र के युवा पृथ्वी चैंपियन के रूप में मान्यता मिली है। पर्यावरण से संबंधित जिस कार्य के लिए आपको यह सम्मान मिला है उसके बारे में विस्तार से बताइए।
हमने एक मशीन बनाई है जो लो कॉस्ट है, स्मॉल स्केल है, और जो खेत में खेती करने के बाद, फसल कटने के बाद जो खेत में अवशेष बच जाते हैं वो उसको इस्तेमाल करके उनको एक कार्बन रिच फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसको फिर अलग अलग उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ईंधन बन सकता है, उससे फर्टिलाइजर बन सकता है, और उससे अनेक प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल बन सकते हैं जैसे एक्टिवेटेड कार्बन। और इस हमारे तकनीक से बायोमास के ओपन बर्निंग के कंपैरिजन में 95% ऑफ स्मोक एलिमिनेट हो जाता है। तो इससे इन कूड़े ककड़ और खेत के अवशेष के जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे भी इसका समाधान हो सकता है।
तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई विद्युत?
हम ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर्दियों के महीने में पराली जलाने से यहाँ पे कैसे प्रदूषण में स्पाइक होता है। दोनों रीजंस के कारण मैं इस फील्ड में उतरा और 2013 से इसमें मैं काम कर रहा हूँ।
तो अब आगे भविष्य की क्या योजना है, इस तकनीक को किसानों तक पहुँचाने के लिए आगे क्या सोचा है?
तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक्सपर्टीज तो मशीन में है, और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है और इतना डाइवर्सिटी है कि हम अपने आप सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम ग्राउंड में जो किसानों के साथ काम करते हैं, जैसे किसानों के संस्था हो गए, फार्मर ग्रुप हो गए, या फिर कृषि उद्योग हो गए जैसे राइस मिल हो गए, कोकोनट ऑयल मिल हो गए, उनके साथ हम पार्टनर करके मशीन की डिप्लॉयमेंट करेंगे और उन्हीं के थ्रू उसका हम उनको किसानों तक पहुंचाएंगे।
लेकिन विद्युत, देखा गया है कि इस तरह की चीजें बनती हैं और उनका उनकी अपस्केलिंग नहीं हो पाती है, तो ये केवल एक अन्वेषण न बनकर रह जाए बल्कि वाकई जमीनी स्थिति में बदलाव लाया जा सके, इसके लिए खासतौर पर किसानों का व्यवहार परिवर्तन भी इसका एक बड़ा आयाम होगा। सो इस सब के लिए कुछ सोचा है कि किस तरह इसे एक बड़े स्केल पर आप अमल में ला सकें?
तो अगर आप इसमें सोचेंगे कि इन क्रॉप रेजिड्यूज को या ये जो खेत में जो अवशेष बच जाते हैं क्यों जलाए जाते हैं, ये किसान इनको इसलिए जलाते हैं क्योंकि इनको इनके लिए वैल्यू नहीं दिखता है और उनको इनको खेत खाली करना होता है अगले फसल को उगाने के लिए, तो इसको ये जला देते हैं। लेकिन अगर इनका इनसे वैल्यू क्रिएशन किया जाए, एक इकोसिस्टम बनाया जाए जहां से ये वेस्ट से वैल्यू बन सके और किसानों को इन अवशेषों के लिए उनकी कीमत मिले, तो इसको जलाएंगे नहीं और वो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा।
तो अगले 5 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए क्या योजना है, क्या करना चाहेंगे, किस तरह से इसे बढ़ाना चाहेंगे और प्रदूषण की समस्या को, खासतौर से दिल्ली के आसपास जो बड़ी समस्या है, इसको किस तरह हल करना चाहेंगे?
अगले 10 सालों में तो हम इसको बड़े पैमाने पर स्केल करना चाहेंगे, अलग अलग टाइप के बायोमास के साथ काम करना चाहेंगे। पैडी स्ट्रॉ तो हो ही गया, राइस हस्क हो गया, कोकोनट शेल हो गया, इन सबको इस्तेमाल कर करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, एक मार्केट प्लेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं अगले 5 सालों में करीब 500 सिस्टम हम डेफिनेटली इंडिया में डिप्लॉय करना चाहते हैं, और अगले 10 सालों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मल्टीपल थाउजेंड सिस्टम इंडिया में डिप्लॉय करना चाहते हैं। हमारा एक पायलट केन्या में भी प्लांट है, तो इंडिया और विश्व भर में हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं और 2030 तक करीब 100 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन हम मिटिगेट करना चाहते हैं इसके द्वारा।
विद्युत मोहन के साथ हुई इस बातचीत का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।